18 मई दिन सोमवार, दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं रेहान फतक। बलात्कारी के हमले के बाद 42 सालों तक कोमा में रही अरुणा शानबाग की मौत।
जैसे हमारा घर का एक मेंबर जाता, जो फीलिंग्स उसके लिए होते वैसे फीलिंग्स उसके लिए, वही भी हमारे घर का मेंबर जैसे ही थी।
नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के साथ 7 समझौतों पर दस्तखत किए।
मेरी सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खास करके विदेश नीति का, और वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं कक्षा के टॉपर सर्वेश वर्मा से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार समीर आत्मज मिश्र से। मुंबई के एक अस्पताल में 4 दशक तक कोमा में रही नर्स अरुणा शानबाग की 68 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। 1973 में अस्पताल के कर्मचारी ने उनके साथ यौन हिंसा की थी। उस घटना के बाद अरुणा कोमा में चली गई थी। उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रखा गया और अस्पताल के स्टाफ ने ही उनकी 4 दशक तक देखभाल की। कतर में साल 2022 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के निर्माण कार्यों पर आधिकारिक रूप से रिपोर्टिंग कर रही बीबीसी की टीम को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया है। 4 सदस्यों की इस टीम को प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही बुलाया था। बीबीसी के मध्य पूर्व संवाददाता मार्क लोबेल का कहना है कि रिपोर्टिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका और उनके साथ जासूसों जैसा बर्ताव किया गया। इस दौरान उनके कई उपकरण भी जब्त कर लिए गए। सरकारी दौरे पर होने के बावजूद हम लोग जैसे ही रिपोर्टिंग से जुड़ी सामग्री इकट्ठा करने लगे, हमें पकड़ लिया गया। हमारी टीम में 4 सदस्य थे और हमें सभी को अलग अलग कर दिया गया। हमसे पूछताछ की गई वैसे ही जैसे हम कोई जासूसी करने आए हों। उस शाम हमें जेल में भी डाल दिया गया। ये थे बीबीसी संवाददाता मार्क लोबेल के शब्द। वहीं कतर सरकार ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कई पत्रकारों को श्रमिकों के आवासों पर रिपोर्टिंग के लिए बुलाया था। इराक की सरकार ने ईरान समर्थित शिया लड़ाकों को रमादी शहर भेजना शुरू कर दिया है, जिस पर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने रविवार को कब्जा कर लिया था। बताया जा रहा है कि ये लड़ाके रमादी पहुंच गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बगदाद से 70 मील दूर स्थित इस शहर में करीब 500 लोग उस वक्त मारे गए थे जब इराकी सेना ने यह शहर छोड़ा था। एक अधिकारी ने बताया कि अनबार प्रांत की राजधानी रमादी से लोग बड़ी तादाद में भाग रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जाने माने टेनिस खिलाड़ी और ग्रैंड स्लैम विजेता बॉब हेविट को दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने एक लड़की के साथ बलात्कार के मामले में 6 साल की कैद की सजा सुनाई है। हेविट को मार्च में जोहानिसबर्ग में सुनवाई के दौरान अदालत ने बलात्कार का दोषी पाया था। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हेविट की उम्र इस समय 75 साल है। बलात्कार का यह मामला कई साल पुराना है। उस समय हेविट दक्षिण अफ्रीका में कोच के तौर पर काम कर रहे थे। ब्रिटेन में एक अस्पताल के कर्मचारी को 2 मरीजों की हत्या करने और कई लोगों को जहर देने के मामले में दोषी पाया गया है। फिलीपींस के रहने वाले विक्टोरिया चुआ नाम का यह कर्मचारी मैनचेस्टर के अस्पताल में काम करते वक्त अपने साथ संक्रमित इंजेक्शन रखता था। पुलिस को उसके घर से एक पत्र मिला है जिसमें उसने लिखा है कि उसके भीतर शैतान रहता है और वो सीधे नरक में जा रहा है। अमरीकी राज्य टेक्सास में पुलिस का कहना है कि उसने 2 बाइकर गैंगों के करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गैंगों के बीच एक दिन पहले हुई लड़ाई में 9 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। बयालीस साल पहले मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में यौन हिंसा का शिकार हुई अरुणा शानबाग की आज मृत्यु हो गई। 67 साल की अरुणा बीते 4 दशकों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अरुणा पर अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने सन 1973 में नृशंस यौन हमला किया था, जिसके बाद से वो लगातार कोमा में थी। मुंबई से सुशांत मोहन की रिपोर्ट।
42 साल पहले मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में ट्रेनी नर्स के तौर पर काम कर रही अरुणा शानबाग की जिंदगी 27 नवंबर 1973 को इसी अस्पताल के वार्ड नंबर 4 के एक बिस्तर तक सिमट कर रह गई। केएम अस्पताल की कुत्तों पर जांच करने वाली लेबोरेटरी में काम करते हुए अरुणा ने पाया कि वहां काम करने वाला वार्ड बॉय सोहनलाल कुत्तों को दिए जाने वाले मटन की चोरी करता है। इस बात को लेकर 27 नवंबर को अरुणा और वार्ड बॉय के बीच कहासुनी हो गई और इसकी शिकायत अरुणा ने अस्पताल प्रशासन से की। शिकायत से गुस्साए वार्ड बॉय ने मौका पाकर अरुणा पर जानलेवा हमला बोल दिया। कुत्तों को बांधने वाली जंजीर से उसने अरुणा का गला घोटना शुरू कर दिया। इस दौरान अरुणा के दिमाग को ऑक्सीजन न मिलने की स्थिति में उनके शरीर को लकवा मार गया। अरुणा के कमजोर पड़ जाने पर सोहनलाल ने उनके साथ बलात्कार की कोशिश भी की और फिर उन्हें मृत समझकर वहां से फरार हो गया। सोहनलाल को तो इस गुनाह के लिए 7 साल की सजा मिली, लेकिन अरुणा का शरीर किसी काम का नहीं रहा और वो सिर्फ थोड़ा देख सकती थी और दूसरों की मदद से खा सकती थी। 42 सालों के सफर में अरुणा का ध्यान रखने वाली स्टाफ नर्स स्मिता ने बताया,
सुबह 5:30 बजे उसका स्पंजिंग के बाद उसको चाय बिस्किट चाय ब्रेड जो होगा वो, उसके बाद 9 बजे उसको ऑमलेट वगैरह यहाँ से जो मिलता था उसको स्पेशल फूड आता था वो 9:30 बजे ब्रेड ना ऑमलेट वगैरह देने का। फिर 12 बजे उसका लंच का टाइम, 4 बजे वापस उसका टी टाइम, टी के साथ मिल्क ब्रेड मस्का वगैरह या तो कुछ भी, जैसा हमारा घर का एक मेंबर जाता जो फीलिंग्स उसके लिए होते वैसे फीलिंग्स उसके लिए है, वही भी हमारे घर का मेंबर जैसे ही थी।
अरुणा इस अस्पताल के परिवार के सदस्य की तरह हो गई थी और उनके जाने के बाद अस्पताल के स्टाफ में शोक था। KAM अस्पताल के डीन अविनाश सूपे ने मौत की वजहों के साथ अपने दुख को जाहिर किया।
न्यूमोनिया हो गया था उनको और न्यूमोनिया की वजह से उनको हार्ट कार्डियक अरेस्ट है। उनके अभी परिवार के लोग आए हैं तो उनके साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि KAM भी उतना ही इन्वॉल्व है इसमें, तो इसलिए हम लोग करेंगे, KAM उनके साथ लेके दोनों मिलके साथ करेंगे।
अरुणा के जाने के बाद अस्पताल की नर्सों ने उनके पार्थिव शरीर को अरुणा के परिवार को देने की बजाय नर्सों को देने की मांग की, क्योंकि पिछले 42 सालों में परिवार ने अरुणा की सुध नहीं ली थी। स्टाफ नर्स कल्पना कहती हैं,
एक दिन का भी उन्होंने अगर सेवा किया रहता, टॉयलेट बाथरूम सब साफ करते रहे तो हम लोगों को समझ पड़ता था क्या है। उन्होंने कुछ भी किया नहीं। वर्स्ट पार्ट ऑफ द रिलेटिव।
42 साल की लंबी तकलीफ देह जिंदगी के बाद अरुणा ने सोमवार सुबह KAM अस्पताल में ही दम तोड़ दिया और उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए उनकी बहन और भांजे के रूप में अरुणा के घर से कोई परिवार का सदस्य अस्पताल आने वाला है। श्वेता पांडे के साथ सुशांत मोहन, BBC मुंबई।
अरुणा शानबाग ने 42 साल अस्पताल में गुजारे। इस दौरान वो वेजिटेटिव अवस्था में रहीं, यानी उनकी आंखें तो खुली थीं पर उन्हें बाहरी दुनिया का कोई एहसास नहीं था, न सुनाई देता था न दिखाई देता था। वो सिर्फ दवाओं के सहारे जिंदा थीं। अगर जिंदगी ऐसी हो जाए तो क्या ऐसे मरीज को दवाओं का सहारा छोड़ मरने की इजाजत दे देनी चाहिए? अरुणा की जीवनी लिखने वाली पिंकी वीरानी ने यही बहस छेड़ी और अंत में भारत में इस पर दिशा निर्देश बनाए गए। अरुणा शानबाग के जीवन के इस पहलू की कहानी के साथ दिव्या आर्य।
अरुणा शानबाग, जिसको कोई भी जस्टिस नहीं मिला, वो इंडिया को एक बहुत बड़ा तोहफा दे गई है।
मुंबई से खड़खड़ाती फोन की लाइन पर बड़े साफ शब्दों में लेखिका पिंकी वीरानी ने मुझे कहा कि जाते जाते अरुणा शानबाग भारत को एक तोहफा दे गई हैं, पैसिव यूथनेशिया के कानून का। पैसिव यूथनेशिया मतलब मरीज को धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट के सिस्टम से हटा देना। अरुणा पर हुए हमले के 25 साल बाद पिंकी वीरानी ने उनकी जीवनी लिखी। उनके साथ समय बिताया तो पिंकी को लगा कि इस हाल में जीने से मरना बेहतर है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल इसी की अपील की। कोर्ट ने यह अनुमति तो नहीं दी पर पैसिव यूथनेशिया के दिशा निर्देश जारी किए।
अगर आप अरुणा की तरह है, अगर आप परसिस्टेंट वेजिटेटिव,
पिंकी बता रही थी कि इस फैसले के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अरुणा की तरह वेजिटेटिव स्टेट में है या वेंटिलेटर पर है और उनका ख्याल रखने वालों, परिवार वालों और डॉक्टरों को लगता है कि उनकी हालत सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो पैसिव यूथनेशिया की मदद ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर किसी मरीज के डॉक्टर और परिवार वाले ऐसा महसूस करें तो हाई कोर्ट में एक अर्जी डाल सकते हैं और पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी जाए, इसका आखिरी फैसला हाई कोर्ट ही लेगा। करीब 6 महीने पहले भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को यूथनेशिया के मामलों में कानून की ही तरह गाइडलाइन मानने का निर्देश भी दिया, पर देश भर में लागू होने के बावजूद अरुणा के लिए ये रास्ता बंद ही रहा। वजह ये कि कोर्ट ने पिंकी वीरानी को उनका गार्जियन नहीं माना। गार्जियन माना KEM अस्पताल को, जहां अरुणा नौकरी करती थी, जहां उन पर हमला हुआ और जिस अस्पताल में उनका दशकों तक इलाज हुआ। केईएम अस्पताल के डीन अविनाश सूपे ने कहा कि अरुणा उनके परिवार जैसी थी और अपने परिवार के लिए कोई मृत्यु मांगे ये सही नहीं है।
तो वो बारे में तो उन्होंने कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। तो कोर्ट हैड अंडरस्टूड आवर प्ली एंड दे हैड रिजेक्टेड द होल थिंग।
अरुणा के केस से देश भर में यूथनेशिया पर बहस छिड़ गई। वेजिटेटिव स्टेट में या लाइफ सपोर्ट में जिंदगी बेहतर है या मौत चुनने का अधिकार भी होना चाहिए। लेखिका पिंकी वीरानी के बाद इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी एक याचिका दायर की है।
यानी कि ये अधिकार कि आपकी आपका अंत एक डिग्निफाइड तरीके से हो, ये मौलिक अधिकार है। और इसी के तहत ये बोला गया कि भाई अगर आप ठीक हो ही नहीं सकते और आपको जबरदस्ती ऐसे वेंटिलेटर पर जीवित रखा जा रहा है, तो ये आपका राइट टू अ डिग्निफाइड डेथ को डिफीट करता है।
भारत का संविधान जीने का हक तो देता है पर मौत चुनने का नहीं। याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले तक पहुंचेगा तो अरुणा की मौत के बाद ही सही, शायद जिंदगी और मौत के इन मुश्किल सवालों के जवाब मिल जाएं। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
तीन देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव दक्षिण कोरिया पहुंचे। यहां उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे के साथ बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा समेत 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी।
मेरी सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खास करके विदेश नीति का, और वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, अब बहुत देख लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के क्यूंग ही विश्वविद्यालय में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। पिछली कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों की लुक ईस्ट नीति के बजाय एक्ट ईस्ट की बात कहकर मोदी ने अपनी सरकार के विदेश नीति के बदलाव की ओर इशारा किया। इससे पहले चीन और मंगोलिया के बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे के साथ बातचीत की। दोनों देशों ने दोहरे कराधान से बचाव, ऊर्जा, सुरक्षा और युवाओं से जुड़े मामलों के साथ ही 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दक्षिण कोरिया भारतीय आधुनिकता के लिए एक अहम सहयोगी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार को और अधिक बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं और दोनों ही देश इसके लिए सहमत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दक्षिण कोरिया मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भी अपनी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाकर शामिल होने के लिए सहमत हुआ है। भारत में अभी तकरीबन 400 दक्षिण कोरियाई कंपनियां काम कर रही हैं, जिन्होंने यहां तकरीबन $3 अरब का निवेश किया हुआ है। दक्षिण कोरिया से पहले प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया और चीन के दौरे पर थे। मोदी की इस यात्रा में इन देशों के साथ भी कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर। ये बीबीसी है, आप दिन भर का पहला अंक सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच का विवाद बढ़ता भी जा रहा है और एक तल्ख चेहरा भी अख्तियार करता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सचिव सेवा अनिंदो मजुमदार के कार्यालय पर ताला लगा दिया गया तो उपराज्यपाल द्वारा कुछ ही घंटों में मजुमदार की जगह नियुक्त किए गए अधिकारी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। नजीब जंग और केजरीवाल के बीच छिड़ी अघोषित जंग पर और जानकारी के साथ सलमान रावी।
सोमवार की सुबह जब दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव अनिंदो मजुमदार सचिवालय की 7वीं मंजिल पर स्थित अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें अपने सेवाकाल का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। उन्होंने अपने कार्यालय के दरवाजे पर ताला लटका हुआ पाया। मजुमदार का कार्यभार भी एक दूसरे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र कुमार को सौंप दिया गया था, मगर कुछ ही घंटों में कुमार की नियुक्ति भी रद्द कर दी गई। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच छिड़ी अघोषित जंग में सरकारी बाबुओं की किरकिरी हो गई है। इस रस्साकशी का पहला शिकार बनी कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गामलिन, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की गई थी। चूंकि मजुमदार ने गामलिन की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे, इसलिए पहली गाज उन्हीं पर गिरी। दिल्ली में ऑटो वालों की एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यवाहक मुख्य सचिव पर निजी विद्युत कंपनियों के लिए काम करने का आरोप लगाया।
सचिव पीछे पड़ी नहीं 15-20 दिन तक कि किसी तरह से इस पे साइन कर दो। जब मंत्री जी ने चारों तरफ पता किया तो पता चला वो चिट्ठी कोई कंफर्ट लेटर नहीं है, वो चिट्ठी गारंटी है। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां, ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी दोस्तों।
वहीं सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना था कि उपराज्यपाल के जरिए केंद्र राज्य में तख्ता पलट करना चाह रही है।
बीजेपी ने एलजी साहब के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की है। एक ऐतिहासिक बहुमत लेकर आई हुई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश करी है इन लोगों ने। कल पहली बार ऐसा हो रहा है कि एलजी सीधे निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को। सीएम को किनारे कर दिया गया, कैबिनेट को किनारे कर दिया गया, किसी अफसर को बताने का अधिकार नहीं है उनके पास में। लेकिन इन सारे रूल्स को संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए,
इस पूरे विवाद में दिल्ली की सरकार को एक अप्रत्याशित खेमे से समर्थन मिलने लगा है और वो खेमा है कांग्रेस का। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि अगर निर्वाचित सरकार अपना मुख्य सचिव भी नियुक्त नहीं कर सकती तो फिर चुनाव का क्या मतलब रह जाता है।
मैं ये मानता हूं कि चीफ सेक्रेटरी चुनने का अधिकार चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी को ही नहीं चुन पाएगा तो कैसे आगे डिलीवर कर पाएगा।
मगर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के मुद्दे लोगों और मीडिया में उछाल रही है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय कहते हैं,
वो लगातार किसी भी तरह से जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स है और मीडिया और सुर्खियों में बने रहने के लिए, ये उनकी आदत है और इसलिए ब्यूरोक्रेसी में एक अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। जिस तरह के लेटर्स ब्यूरोक्रेसी के लिए लिखे जा रहे हैं, आशीष जोशी का मामला आपके सामने।
दिल्ली की सरकार और उपराज्यपाल के बीच छिड़ा विवाद अब एक खराब चेहरा इख्तियार करता जा रहा है और इस बात की संभावनाएं हैं कि अब ये मामला अदालत तक पहुंच सकता है, जहां सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति में संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
बस्ती जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर सहसराव गांव के सर्वेश वर्मा ने यूपी के 10वीं के नतीजों में पूरे राज्य में टॉप किया है। आज वो हमारे दिल्ली स्टूडियो आए। हमारे साथी इंदु पांडे ने उनसे पूछा कि अपने बारे में कुछ बताइए, कितने अंक मिले हैं आपको।
मेरा नाम सर्वेश वर्मा है और मुझे 600 में से 581 मार्क्स मिले हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में। और मेरे पिताजी का नाम श्री स्वामीनाथ वर्मा है, खेती करते हैं और घर पर ही सब्जी भी बेचा करते हैं। हमारे घर में पढ़ाई का माहौल काफ़ी अच्छा है। हमारी बहन भी इस बार BSc फर्स्ट ईयर का एग्जाम दी है, तो अभी हमारी काफ़ी हेल्प की परीक्षा की तैयारी में।
और आपकी टीचर्स ने आपकी कितनी मदद की?
टीचर्स ने काफ़ी मदद की, जो हमें समझ में नहीं आता था हम पूछते थे और हमारे टीचर बेझिझक बताते थे। और वो यह भी कहते थे कि अगर समझ में ना आए तो 1000 बार पूछो, लेकिन जब पूछा जाए कि समझ में आया है तो ये कह दो कि आया है या नहीं आया है, छुपाओ मत।
कोई अच्छी चीज़ अचीव करते मिलती है तो हम मम्मी पापा से बोलते हैं ना, हमें ये चीज़ दिलाना, तो तुमने कुछ फरमाइश की है मम्मी पापा से?
हाँ, साइकिल हमारी पुरानी हो गई थी तो इसलिए फरमाइश की नई साइकिल चाहिए, तो 5-6 महीने में पापा ने किसी तरह से दिलवाई।
कौन सा हीरो तुम्हारा फेवरेट है?
अक्षय कुमार है।
तो तुमको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे खूब पढ़ना है?
प्रेरणा तो कहीं से नहीं मिली, लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे पढ़ने में रुचि थी, इसलिए मैं शुरू से ही पढ़ने में अच्छा हूँ।
तो आपका जो घर है और जो स्कूल है, दोनों की दूरी कितनी है?
10-11 किलोमीटर।
कैसे जाते हो?
साइकिल से।
11 किलोमीटर तुम साइकिल से जाते हो?
जी।
कितना टाइम लगता है?
45 मिनट, कभी कभी 35 मिनट ही लगता है, बहुत तेज चलाते हैं साइकिल।
तो वहाँ पे बस की या कोई और सुविधा नहीं है घर से स्कूल जाने की?
नहीं, ना स्कूल बस है, लेकिन उसका किराया काफी ज्यादा है, इसीलिए साइकिल से ही जाते हैं।
और सबसे ज्यादा नंबर किस चीज में आए हैं?
मैथ्स में।
कितने?
100 में 100। मेरा पसंदीदा विषय मैथमेटिक्स है क्योंकि ये काफी आसान विषय है, इसमें कुछ याद नहीं करना रहता और ये काफी रुचिकर विषय भी है। इसमें सवाल जब पूरा हो जाता है, आंसर आ जाता है तो काफी मजा आता है।
तो अब आगे जाके क्या, कौन सी परीक्षाओं में आप टॉप करना चाहते हैं?
आगे जाके हम 12th में बोर्ड की परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं। उसके बाद हम IIT JEE में डालेंगे, उसको भी टॉप करना चाहते हैं। IAS की तैयारी करेंगे, IAS में हम DM बनना चाहते हैं।
और DM बन के क्या करोगे? अच्छा ये बताओ।
DM बन के हम सिस्टम को सुधारेंगे, आजकल काफी भ्रष्टाचार हो गया है, वो कुछ ऑफिसर हैं वो घूस पर कार्य करते हैं, सब नहीं है ऐसे लेकिन कुछ हैं। और यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में है कि कुछ लोगों को ज्यादा दिया जाता है, कुछ लोगों को दिया ही नहीं जाता है, तो ये सब काफी बुरा लगता है हमें।
और इतने सारे लोग तुम्हारे को बुला रहे हैं, तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सब देख के कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है लेकिन इतना ज्यादा हो गया है, बहुत आश्चर्य हो रहा है।
तो कौन कौन लोग आए तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए?
हम बहुत न्यूज चैनल्स वाले आए थे।
यूपी बोर्ड के 10वीं के टॉपर सर्वेश वर्मा से बात कर रही थी इंदु पांडे। और अब बारी है आपके पत्रों की। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश प्रियदर्शी और समीर आत्मज मिश्र।
नमस्कार, मैं हूं राजेश प्रियदर्शी बीबीसी के स्टूडियो में और मेरे साथ हैं समीर आत्मज मिश्र ढेर सारी चिट्ठियों के साथ, और चिट्ठियां इस बार कुछ खास हैं।
जी राजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। खास ये है कि जो हम इधर बीच बीबीसी हिंदी सेवा के 75 वर्ष पूरे होने पर खास कार्यक्रम कर रहे हैं, खास प्रस्तुतियां दे रहे हैं, उसको लेकर के श्रोताओं ने ज़्यादातर पत्र लिखे हैं। जैसे मैं एक पत्र है, जो पहला पत्र मैं अगर बात करूँ, रफ़ीक इब्राहिम परकार, ये करजी खेड़ रत्नागिरी से हैं। इन्होंने लिखा है
रत्नागिरी महाराष्ट्र।
जी, रत्नागिरी महाराष्ट्र से हैं
जी।
इन्होंने लिखा हुआ है कि अभी अभी राजेश जोशी की प्रस्तुति सुनी, उससे पहले सीमा चिश्ती और परवेज आलम की पेशकश ने मन मोह लिया, मुझे मेरे अतीत की सारी घटनाएं याद आईं, आप सभी का शुक्रिया, खास बीबीसी हिंदी के लिए, ये मेरे मन की आवाज़ है। और इन्होंने काफ़ी कुछ और प्रशंसा में लिखा है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 टाइप की चीज़ें।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप जैसे श्रोताओं का। और जो अतीत की यादों की आपने बात की, हमारे लिए भी एक बहाना था पीछे मुड़ के देखने का, उन बड़ी घटनाओं के बारे में एक बार फिर से यादें ताज़ा करने का। और जो दुनिया का इतिहास है, जो भारत का इतिहास है पिछले 75 सालों का, और जो बीबीसी का इतिहास है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल गुथे हुए हैं। तो हमारे लिए संभव नहीं था कि हम अपने अतीत को याद करें और देश दुनिया के अतीत को न याद करें। तो बहुत मजा आया ये कार्यक्रम करके।
जी, उसके बाद ये विजय सिंह सहारण राजस्थान से हैं, इन्होंने भी उसी की चर्चा की है कि आजकल बीबीसी हिंदी रेडियो पर प्रसारित बीबीसी 75 वर्ष श्रृंखला सुन रहा हूं, जो कि बहुत पसंद आ रही है। इन्होंने लिखा है कि एक वाक्य का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से बीबीसी से ये जुड़े हैं। ये लिखते हैं कि इनके दादाजी बीबीसी ट्यून कर लेते थे और बिना किसी फ्रीक्वेंसी की जानकारी के। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता लगता है कि ये बीबीसी लंदन है, तो कहने लगे कि इसमें बोलने वालों की सांस की आवाज़ सुनाई देती है, यही बीबीसी की पहचान है।
जी, अच्छी अच्छी दिलचस्प बात कही उन्होंने, क्योंकि बीबीसी ने हमेशा ये प्रयास किया, और मुझे भी जब मैं बीबीसी में आया तो ये ट्रेनिंग दी गई कि सहज तरीके से आप अपनी बात कहें, जहां सांस लेना है वहां रुकें, वहां सांस लें, और लोगों से वैसे बात करें जैसे आप आम बोलचाल में एक दूसरे से करते हैं, भले सामने माइक्रोफोन हो लेकिन आप करोड़ों लोगों से उसी तरह से संवाद करें जैसे एक व्यक्ति दूसरे से करता है।
जी, और राजेश जी, विजय सिंह सहारण, इनका एक निवेदन भी है, इन्होंने लिखा है कि एक और गुजारिश है कि क्यों न दिन भर कार्यक्रम का नाम बदलकर फिर से आजकल कर दिया जाए।
ये सुझाव आपने दिया, शायद आपके मन में आजकल की यादें ताज़ा है, अब इस नाम को बदले हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है और बहुत सारे लोग अब इसको दिन भर के नाम से ही जानते हैं, तो वापस जाना शायद कोई बहुत बेहतर विकल्प न हो।
जी, और अगला पत्र है मेरे हाथ में मनोज कामत का, ये नासिक महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने लिखा है कि 75 सालों में बीबीसी बच्चन जी की एक्टिंग जैसी ही परिपक्व होती जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, आवाज़ का यही रिश्ता होता है एक दूसरे का, जब जब भी दोबारा सुनने को मिलती है तो न सिर्फ वो आवाज़ बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी आपके अपने जीवन की जो बातें होती हैं वो भी ताज़ा हो जाती हैं।
और ये जंग बहादुर सिंह हैं गोल पहाड़ी से, इन्होंने लिखा हुआ है कि 15 मई 2015 को सांध्यकालीन सभा में विवेचना के स्थान पर श्री परवेज आलम जी का संस्मरण सुनकर मैं पुराने दिनों में खो गया। परवेज भाई 1980 के दशक से लेकर 90 के दशक के अंत तक के चुनिंदा कार्यक्रमों की वानगी सुनवाकर भूले बिसरे मंजर को आंखों के सामने ला दिए। और भी उन्होंने काफी चीजें लिखी हैं परवेज आलम के, कई जो उस समय वो कार्यक्रम
लता
करते
की
थे।
कहानी,
जी हाँ, लता की कहानी और
काम की बात,
काम की बात, उनके कई इंटरव्यू, उन्होंने जो साक्षात्कार किए थे उसका जिक्र इन्होंने किया हुआ है।
जी, हम आपकी बात परवेज भाई तक ज़रूर पहुंचा देंगे, क्योंकि परवेज साहब हमारे वरिष्ठ रहे हैं और बहुत ही मंजे हुए ब्रॉडकास्टर हैं। उनके साथ काम करके हमें बहुत मज़ा आता है और आपके लोग, आप लोगों के जो पत्र आते हैं उससे हमें अंदाज़ा मिलता है कि वो आज भी लोगों के दिलों में उनकी आवाज़ गूंजती है, उनको पसंद है उनकी आवाज़।
सैयद रफ़ीक लखैपुरी, ये हैं दुबई संयुक्त अरब अमीरात से, इन्होंने लिखा है कि 75 साल पूरा होने पर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर दिए हैं। पुराने प्रोग्राम जैसे हमसे पूछिए ने मेरे सामान्य ज्ञान को काफ़ी बढ़ाया था। और भी चीज़ें इन्होंने लिखी है और काफ़ी प्रशंसा की है कि जो बीबीसी में एक करियर क्या करूं और दूसरे कार्यक्रम आया करते थे, तो इनका ये है कि अगर पुराने कुछ कार्यक्रम जिनसे जानकारी मिलती थी अगर वो फिर से बीबीसी पर प्रसारित किए जाएं।
बहुत शुक्रिया, हम पुराने कार्यक्रम अपने आर्काइव से बीच बीच में निकाल कर जब भी मौका मिलता है प्रसारित करते रहते हैं और ज़रूर करेंगे।
तो अब समय पूरा हो चला है आपके पत्रों के जवाब देने का, आपकी जिज्ञासाओं के समाधान करने का, और अब समीर आत्मज मिश्र और राजेश जोशी को दें अनुमति। और एक बार आपको फिर से बता दें, आपको पत्र लिखने के लिए अगर आप ईमेल से लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk, और अगर आप पत्र के जरिए, पोस्टकार्ड के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप लिख डालिए बीबीसी हिंदी, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003।
और अब बारी है खेल समाचारों की, हमेशा की तरह तैयार हैं आदेश कुमार गुप्त, बताइए।
जी रेहान, आईपीएल 8 में फाइनल में पहुंचने की जंग शुरू हो चुकी है। प्लेऑफ में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस अपनी आखिरी परीक्षा की तैयारी में है। इसी कड़ी में कल पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रही चेन्नई ने अपने आप को वाकई सुपर किंग्स साबित करते हुए 14 में से 9 मुकाबले अपने नाम किए हैं और अंक तालिका में 18 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही। शुरुआती दौर में एक के बाद एक लगातार 4 हार का सामना करने के बाद आखिरकार मुंबई ने भी जैसे तैसे प्लेऑफ में जगह बनाई। उसने 14 में से 8 मुकाबले जीते और 16 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही। रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रही मुंबई इंडियंस को सबसे बड़ा लाभ कल अपने मैदान वानखेड़े स्टेडियम में खेलने का मिलेगा। वैसे मुंबई ने पिछले मुकाबले में हैदराबाद सनराइजर्स को उसी के मैदान में एक तरफा रूप से 9 विकेट से मात दी। मुंबई के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद की पूरी टीम का पुलिंदा महज 113 रनों पर बांधा। उनके तेज गेंदबाज मिचेल मैकलंगन ने केवल 16 रन देकर 3 विकेट झटके। न्यूजीलैंड के इस खब्बू तेज गेंदबाज ने पिछले 10 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए हैं, तो लसिथ मलिंगा ने भी अभी तक शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 विकेट अपने नाम किए हैं। हरभजन सिंह ने हालांकि पिछले 10 मुकाबलों में 9 विकेट लिए लेकिन काफ़ी कसी गेंदबाजी की है। और बैटिंग में मुंबई का दारोमदार रोहित शर्मा के अलावा अच्छी फॉर्म में चल रहे पार्थिव पटेल और लैंडल सिमंस पर रहेगा। दूसरी तरफ धोनी, फैफ डुप्लेसी, सुरेश रैना, माइकल हसी, डेन ब्रावो के दम पर चेन्नई भी दमदार है। और कल एक खास बात यह भी रहेगी कि जो भी टीम हारेगी उसे एक अवसर और मिलेगा और वो शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में बुधवार को होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले के विजेता का सामना करेगी। वहीं स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के एकमात्र गोल की मदद से बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराकर ला लीगा खिताब अपने नाम किया।
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश आपका। और चलते चलते एक नजर विश्व समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। मुंबई के एक अस्पताल में 4 दशक तक कोमा में रही नर्स अरुणा शानबाग की 68 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। कतर में साल 2022 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के निर्माण कार्यों पर आधिकारिक रूप से रिपोर्टिंग कर रही बीबीसी की टीम को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया है। इराक की सरकार ने ईरान समर्थित शिया लड़ाकों को रमादी शहर भेजना शुरू किया है, जिस पर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने रविवार को कब्जा कर लिया था। कोलंबिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और 30 घायल हो गए हैं। ये भूस्खलन कोलंबिया के एंटियोकिया प्रांत में आया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं देते हैं विराम। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की दीपक जसरोटिया ने। रेहान फजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।